ओम शांति। बाबा के महावीर बच्चों का संगठन शांति वन में योग तपस्या करने के लिए आया है। इतने पांडवों को देखकर पांडव पति भी कितना खुश होता होगा। कुमार और अधर कुमारों का ये संगठन है। हम सब ने जिस दिन बाबा को पहचाना, हमें बाबा ने नया जन्म दिया, पालना दी, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाई और श्रेष्ठ मत दे करके ऊंची मंजिल पर पहुंचा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। आप सभी जो आज इस संगठन में उपस्थित हैं, क्या हर एक अपने आप को मर्जीवा समझते हैं? जो समझते हैं हाँ हम मर्जीवा हैं, सभी हाथ उठा रहे हैं। कहाँ से मरे और कहाँ पर जीवित हुए? तो मरना और जीना एक ही शब्द में दोनों हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे बने, जो हमारे जीवन की साधारणता थी, जो हमारे जीवन की लौकिकता थी, जो हमारे जीवन का शूद्रपन का संस्कार था, उस जीवन से हम सब मर गए और बाबा के पास ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं, अलौकिक जीवन में, श्रेष्ठ आत्मा के जीवन में हम सब मर्जीवा बच्चे जी रहे हैं। अब मर्जीवा जीवन के अंदर अगर कोई शरीर छोड़ने के बाद जब नया शरीर लेता है और उस नए जन्म में उसे पुरानी स्मृतियां रहती हैं, तो हम सब जानते हैं कि वो परिवार, वो घर कितना उसके पीछे परेशान हो जाता है। कोई बच्चे को अपने पास्ट की जीवन याद रहे तो उसकी क्या गति होती है, आप हम सब जानते हैं, सुना है। उपास्ट के अपने संबंधों को याद करके उनकी तरफ खींचता है, नए संबंधों में जहां पर जिया, जहां पर जन्म लिया, उन संबंधों से वो पहचान ही नहीं बना पाता है। हम सभी भी ब्राह्मण जीवन में मर्जीवा बने हैं। बाबा ने हमें मुख वंशावली, मुख से जन्म दे करके अपना बच्चा बनाया। सबसे श्रेष्ठ जन्म मुख की संतान मानी जाती है। मुख वंशावली ब्राह्मण आत्माएं जिनमें बाबा की बहुत आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, बाबा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा अपने ब्राह्मण कुल का, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। और जो बाप दादा माता पिता का नाम रोशन करता है उसे ही बाबा कहते हैं ये मेरा सपूत बच्चा है। इसमें तो आप सभी कहेंगे हम बाबा के सपूत बच्चे हैं। अगर हाथ उठवाएंगे तो 100% कौन ऐसा कहेगा कि मैं सपूत नहीं हूं। लेकिन फिर भी बाबा की मुरली में मातेले और सौतेले, सपूत और कपूत, ये शब्द हम सब सुनते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। बाबा भिन्न भिन्न रूप से हमारी स्टेज को, स्थिति को देखते हुए हमें भिन्न भिन्न टाइटल से संबोधित करते हैं। आज इस विषय को हम ले रहे हैं कि हम इस मर्जीवा जीवन के अंदर बाबा के सपूत बच्चे बनकर रहें, उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, वैसे लौकिक जीवन में भी सपूत उसको कहा जाता जो आज्ञाकारी होता है, माता पिता का कहना मानता है, उनके मुख से निकली हुई हर बात को स्वीकार कर लेता है, उसकी आज्ञा प्रमाण कर्म बोल अपना व्यवहार बनाता है। बाबा की आज्ञाओं को हम सब जानते हैं, जितने भी बाबा के बच्चे हैं जो बाबा की मुरली रोज सुनते हैं, मैं समझता हूं हर एक जानता है हमारे मीठे बाबा ने हम सबको क्या क्या आज्ञाएं दी हैं। लेकिन कहना पड़ता है, कहीं न कहीं उन आज्ञाओं का उल्लंघन अवज्ञाएं हो जाती हैं, और यदि मैं कोई आज्ञा की अवज्ञा कर रहा हूं तो क्या मैं बाबा का सपूत बच्चा कहला सकता हूं? ये हर एक अपने आप से पूछे। बाबा की सबसे पहली आज्ञा है, बच्चे आंख खुलते ही सवेरे अमृत वेले मेरे से मिलन मनाओ, वरदानों से अपनी झोली भरो, स्पेशल आप बच्चों के लिए मैंने वो समय निश्चित किया है, वो समय आप बच्चों के लिए ही है। 5 बजे के बाद भक्तों की लाइन शुरू हो जाती है। हम बाबा की इस आज्ञा को कितना नियम पूर्वक समझ से पालन करते हैं वो हर एक नंबर वार ही है। अमृत वेले की आज्ञा ऐसी है कि अगर कोई ब्राह्मण आत्मा अपनी दिनचर्या पर संपूर्ण ध्यान रखती तो अमृत वेला वो यथार्थ रीति से कर सकती है, लेकिन कोई ऐसी आदत है, कोई ऐसी ड्यूटी मिली हुई है या ऐसी कोई सेवाएं हैं जो रात को काफी देर तक जगना पड़ता है, या कोई आदत बना ली है जगते हैं, आजकल साइंस के साधनों ने रात को भी दिन बना दिया है, और कई आत्माएं उस आदत को अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर प्रयोग में लाती हैं। अगर मान लो आपको अधिक समय तक कंप्यूटर पर बैठने की आदत है, युवा बैठे हैं अधिकतर, कुमार हैं, अधर कुमार भी हैं, और आजकल का जमाना साइंस के युग में कंप्यूटर का है, और अगर कंप्यूटर पर बैठ गए तो मैंने देखा है कई घंटे उसके पीछे चले जाते हैं, और अगर इंटरेस्टिंग सी चीज ऐसी कोई देखने की आदत बन गई इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अगर हम सब उसमें लग गए तो हमारा क्या होगा, अमृत वेला होगा या नहीं? कई कहते हैं हम रात को बैठ करके सेवा करते हैं, इंटरनेट से इधर से उधर मैसेज भेजते हैं, बाबा की मुरलियां इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, कुछ न कुछ सेवा करते हैं, लेकिन क्या श्रीमत है ऐसी सेवा करने की? एक बार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, शायद आप सब ने सुना हो, मिलियन मिनट्स फॉर पीस अपील, सुना है? उस समय मिनट्स इकट्ठे किए जा रहे थे पीस के लिए, पूरे विश्व के अंदर ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था और विदेश वालों ने ये ड्यूटी अपने हाथ में ली थी। अब जितने मिनट सारे दिन में उनके पास इकट्ठे होते थे वो रात को कंपाइल करते थे, कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते थे और काफी रात तक उनको जगना पड़ता था। उनकी सारी दिनचर्या अपसेट हो गई, बाबा के सामने आए और बाबा को कंप्लेन की कि बाबा ऐसी सेवाएं मिली हैं, इतनी अधिक सेवाएं हैं कि मेरा अमृत वेला नहीं हो पाता, रात को बहुत देर तक जगना पड़ता है, थक जाते हैं, अगर सवेरे जबरदस्ती उठते भी हैं तो नींद आती है, योग में मजा नहीं आता। बाबा ने बड़े प्यार से दृष्टि दी और कहा, बच्चे तुम जो चार घंटे रात को जगकर काम करते हो, बाबा एक राय देते हैं, अमृत वेले के बाद एक घंटा अगर वो करोगे तो तीन चार घंटे रात का काम आप एक घंटे में पूरा कर लोगे, आपकी दिनचर्या इसमें बिगड़ेगी नहीं, आप समय पर सो जाओ, समय पर उठो, समय पर अमृत वेला करो और उसके बाद के समय एक घंटा बैठेंगे तो एक घंटे में रात का बचा हुआ काम आपकी फ्रेश बुद्धि से बहुत अच्छे से अच्छा हो जाएगा। शायद आप लोगों ने अभ्यास किया हो, ये मेरा तो रहता है कि अगर कभी बहुत काम होते हैं, पेंडिंग होते हैं, जैसे मीटिंग चलती हैं, सारी बुलेटिन मुझे तैयार करनी पड़ती, मैं रात को जग करके काम कभी नहीं करता, सवेरे सवेरे अमृत वेला किया आधा घंटे और उसके बाद एक घंटा अगर बैठ गए तो पूरे दिन की बुलेटिन जो पूरे दिन में चर्चाएं हुई वो एक घंटे में तैयार हो जाती। बहुत अच्छी विधि बाबा ने हम सबको सिखाई है कि आज्ञाकारी बच्चे, बाबा की आज्ञा में भला है, आज्ञा में ही कल्याण है, इसलिए छोटी छोटी आज्ञाओं की भी अवज्ञा न हो इस पर ध्यान दो, तब कहेंगे सपूत बच्चे। हम सब जानते हैं कुमार हैं या अधर कुमार हैं, संगम युग पर हम सबको बाबा ने पवित्र दृष्टि और वृत्ति की आज्ञा दी है। किसी भी आत्मा को देखो, किसी के संपर्क में आओ, किसी के संबंध में आओ तो बाबा की आज्ञा है चमकती हुई मणि पर नजर डालो, भ्रकुटी के बीच में आत्मा को देखने का अभ्यास करो, नीचे सर्प है उस सर्प को मत देखना, मणि को देखना, शरीर रूपी सांप को नहीं, ये बाबा की आज्ञा है। अगर हम इस ब्राह्मण जीवन में बड़ा पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, शुद्ध जीवन जीना चाहते हैं तो हमें आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ाना होगा। ये बाबा की पहली और लास्ट आज्ञा है, शुरू दिन से, जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से ही लेसन मिला और अंत तक हम पढ़ते आ रहे हैं और लास्ट में भी इसी अभ्यास से हम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनेंगे और इस देह से डिटैच होकर बाबा के साथ जाएंगे। लेकिन इस अभ्यास को किसने कितना बढ़ाया है, इस आज्ञा को कितना हमने माना, इसमें भी हरेक नंबर वार हैं, क्योंकि पवित्र दृष्टि, शुद्ध वृत्ति, बहुत स्थिर और शीतल मन योगी जीवन की पहली निशानी है। अगर सचमुच हम राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं तो हमारी दृष्टि बड़ी शुद्ध पवित्र होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी अपवित्रता, क्रिमिनलिटी ना आए, देह को देखते, देह के संबंध निभाते, कार्य व्यवहार में आते, हर संगठन में रहते, यदि मैं आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आत्मा को देखने का अभ्यास करता तो मैं समझता हूं कर्म इंद्रियां अपने आप शीतल हो जाती हैं। ये बाबा की दूसरी आज्ञा है। और सूक्ष्म आज्ञाओं की लिस्ट हमारे पास बहुत लंबी है, लेकिन सपूत बच्चों की कुछ बहुत सारी निशानियां मेरी बुद्धि में आ रही हैं, इसलिए दो बातें और सुना देता हूं आज्ञाकारी की। बाबा की आज्ञा है, बच्चे शुद्ध अन्न का प्रयोग करो, क्योंकि जैसा अन्न वैसा ही मन। कई बाबा के बच्चे इसमें बेपरवाह रहते हैं, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते या पारिवारिक समस्याएं ऐसी हैं, प्रश्न करेंगे मैं क्या करूं, मेरे आगे ये प्रॉब्लम है। अधर कुमार कहेंगे कि मेरी युगल नहीं कहना मानती, वो ज्ञान में नहीं चलती, मुझे उसके हाथ का खाना पड़ता है। कुमार कहेंगे कि मुझे इतनी ड्यूटी है, इतनी सेवाएं हैं, इतनी बिजी लाइफ है, जो मैं भी किसी न किसी के हाथ का खा लेता हूं। लेकिन यदि हमें पक्का ब्राह्मण सच्चा योगी बनना है तो इस परहेज में जितना जो पास हो जाए, शुद्ध अन्न, सात्विक अन्न और योगियों के हाथ का बना हुआ, इसमें जितना आप पक्के रहेंगे उतना आपका मन बड़ा स्थिर रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा, योग सहज लगेगा। ये बाबा की आज्ञा है और आज्ञा समझ करके हमें पालन करना है। चौथी आज्ञा है बाबा की, संग दोष में कभी भी नहीं आना। मैं आपको एक बात सुनाता हूं, जब मैं शुरू शुरू में मधुबन में आया, छोटी उम्र थी 15-16 साल की, तो हमारी दीदी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम संग की संभाल करना। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, हम पुरानी दुनिया का संग तो छोड़ के आ गए, साथियों का संग छोड़ के आ गए, अब मधुबन में आए हैं, यहां भी दीदी यही शिक्षा दे रही, संग की संभाल करना। मैंने कहा दीदी यहां किसके संग की संभाल को, यहां सब अच्छा ही संग है। तो दीदी कहती है नहीं, कई बाबा के बच्चे समर्पित हो जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं, सेवा करते करते यज्ञ निवासी बन जाते, लेकिन पढ़ाई से प्यार नहीं, योग से कोई मतलब नहीं, परिवार के प्रति वो भावनाएं नहीं, काम किया दो रोटी खाई मौज से रहे, ऐसा संग भी नहीं करना। और यदि कोई बड़ों की, यज्ञ की, बाबा की, मुरली की, पढ़ाई की कोई निमित्तात्मा की ग्लानी करे, कोई नेगेटिव बात सुनाए, आप उस नेगेटिव बात करने वाले के संग से अपने को बचाना। कोई मुरली के अंदर ही आपको नुक्स निकाल करके बताए कि देखो कल तो बाबा ये बोल रहा था, आज तो ये बोलता है, आज ऐसा है कल ऐसा है, भिन्न भिन्न रीति से मुरली के विषय में भी कई कमेंट्स अपनी अपनी लोग दे देते, बाबा के महावाक्यों में भी नुक्ताचीनी करते, ऐसे संग वालों से भी खबरदार, संभल के रहना, नहीं तो अपने संग का रंग लगा करके इस ईश्वरीय परिवार से, इस ऊंची पालना से वंचित कर देंगे। अगर ये चार बाबा की आज्ञाएं कोई ब्राह्मण आत्मा पालन कर ले, बाबा का सपूत बच्चा कहला सकता है, अधिकारी है। और बहुत सारी बातें हैं, अब दूसरी बात की ओर मैं आता हूं, वफादार। आपने सुना होगा ये शब्द बाबा का, जानवरों में भी वफादारी होती है। यदि आपने कोई कुत्ता पाला है, आप जानते हो कितना वफादार मालिक का होता है। कोई भी पशु अगर आपने बहुत प्यार से उसकी पालना की है, उसको अच्छी तरह से खाना पीने का ध्यान रखा है, सेवा की है उसकी, वो मालिक के लिए वफादारी करता है। अपनी जान देने के लिए भी वो तैयार हो जाता है, मालिक को नुकसान नहीं पहुंचने देता। इसको कहते हैं वफादारी। बाबा भी वफादार बच्चा उसको कहता जो पतिव्रता और पिताव्रता है, जो एक बाबा दूसरा न कोई, कहीं पर भी जिसकी आंख नहीं जाती, हर परिस्थिति में हर बात में सबसे पहले बाबा की याद जिसे आती है। उसका एक स्लोगन है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सब कुछ साथ निभाऊं, मेरा तो एक दूसरा न कोई, ये वफादारी है। किसी में भी आंख न जाए, चाहे वो कितना रूपवान हो, चाहे वो कितना धनवान हो। वफादार वो है जो एक के ऊपर पूर्ण रीति से प्रभावित है और समर्पित है। इसलिए बाबा हम बच्चों को सपूत तब कहता है जब हम ऐसे वफादार बन करके रहते हैं। ऐसे नहीं कोई ने कोई प्राप्ति करा दी, कोई रिद्धि सिद्धि, कोई चमत्कार दिखा दिए, हम उसकी तरफ झुक जाएं कि हम तो इतने समय से ज्ञान में आए, यहां तो आने के बाद और मेरी शरीर की बीमारियां बढ़ती गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये ऐसा सिद्ध पुरुष आ गया, ये तो सिर्फ ऐसे एक भभूत दे देता है और मेरी बीमारी ठीक हो गई, इसने सिर्फ ऐसे आशीर्वाद दिया, मेरा ये प्रॉब्लम हल हो गई। बाबा के ज्ञान में तो मैं इतने समय से था, मुझे तो कोई अनुभव ही नहीं हुआ। फौरन बुद्धि अगर कन्वर्ट हो जाए, अल्पज्ञ आत्माएं अगर मुझ आत्मा को प्रभावित कर लें, परमात्मा की पालना लेने वाली आत्माएं अगर किसी हद के पीछे लटक जाएं, अटक जाएं, भटक जाएं, तो उनको वफादार नहीं कहा जाता। इसलिए वफादार वही है जो एक बाबा दूसरा न कोई, तेरी गली में जीऊं, तेरी गली में मरूं, तेरे सिवाय मेरा और कोई नहीं है। सभी ऐसे कुमार हैं, समझते हो? कुमार हाथ उठाओ, समझते हो ऐसे हैं? कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा पेपर आ जाए, क्योंकि कुमारों को कभी कभी अकेलापन बहुत भासता है। बीमार हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बना के खिलाने वाला नहीं है, क्या करूं, कैसे करूं, बहुत से प्रश्न उठते हैं। अगर हम सभी वफादार होकर के रहते हैं तो बाबा वफादारी का रिटर्न जरूर करता है। कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन संपूर्ण विश्वास है बाबा में, तो बाबा कहीं न कहीं से मददगार भेज देगा। अभी अभी मैं छत्तीसगढ़ से आया, कल ही पहुंचा हूं। एक सेंटर पर मैं गया, वहां 100 कुमार थे, एक ही सेंटर के 100 कुमार। और सब पढ़े लिखे इंजीनियर अधिकतर। इतना सुंदर संगठन, कभी भी किसी को जरूरत नहीं पड़ती कि टीचर से भी कोई सहयोग लें। उनका आपस में इतना प्यार है कि अगर कोई किसी को फोन कर दे कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हॉस्पिटल में ले चलो या मुझे कुछ प्रॉब्लम है, उसी समय चाहे रात को 12 बजाओ 1 बजाओ कुमार हाजिर हो जाते एक दूसरे की सेवा के लिए। सब मिल करके एक दूसरे को पूछते हैं, समय पर साथ देते हैं, जिसको जो आवश्यकता है वो पूरी करते हैं, ना वो लौकिक पर डिपेंड करते हैं ना लौकिक टीचर्स पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनकी आगे भी मर्यादाएं हैं। इसलिए जहां पर भी हैं, अगर हम 5-7 भी हैं, बाबा के हैं, सभी मिल करके रहते हैं, एक दूसरे को साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, तो ये जो बातें हमारे आगे प्रश्न रूप में आती हैं, जो हमें बार बार कोई देहधारी खींचता है, उसके सहयोग की आवश्यकता महसूस होती। मैं समझता हूँ कुमार इस जीवन में रहते हुए एकदम निश्चिंत और निर्विघ्न रह सकते हैं। इसलिए वफादार होकर के रहें, सच्चे दिल पर साहेब राजी। अगर सच्चाई ही अंदर की तो बाबा आपको जरूर मददगार भेजेगा, मदद होगी, मिलेगी। और तीसरी बात है एक बहुत अंदर और बाहर का अनिष्ट, शायद आप लोगों ने सुना हो, यज्ञ के अंदर अनिष्ट का टाइटल किसको मिला हुआ था? जब हम आए तो दादा विश्व रतन संपूर्ण यज्ञ के बाबा के प्रति सबके प्रति अनिष्ट बच्चा कहलाते थे। कभी किसी में आंख नहीं डूबी और कभी कोई एक पैसे की भी उन्होंने हेरा फेरी नहीं की। बहुत ईमानदार, विश्वास पात्र सपूत वो है जो ऐसा अपने आप से कभी ठगी नहीं करे। अपने आप से ठगी समझते होंगे, अंदर एक बाहर दूसरा, ये अपने से ठगी है। बाहर से हम दिखाते हैं हम तो बड़े योगी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े समझदार हैं, और अंदर से कालापन जाता नहीं, युद्ध चलती रहती है, विकार सताते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। अंदर और बाहर एक नहीं, वो अनिष्ट नहीं है। बाबा अनिष्ट उसे कहता है जिसकी अंदर और बाहर दोनों की समता है, समानता है, कथनी और करनी एक जैसी है, और जरा भी कोई हेरा फेरी का संस्कार नहीं है, बात में भी हेरा फेरी नहीं, इधर कुछ कह रहा है इधर कुछ कह रहा है, उसको भी अनिष्ट नहीं कहा जाता। कई ऐसी आत्माएं हैं जो एक कहेंगी कुछ, करेंगी कुछ, यहां कुछ सुनाएंगी वहां कुछ सुना देंगी, छिपाएंगी बताएंगी नहीं, स्पष्ट नहीं रहेंगी। बाबा कहता है ये डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं है। न बाबा से हम ईमानदार है, न अपने आप से ईमानदार है, न यज्ञ से ईमानदार है, न बड़ों से ईमानदार है। ईमानदार वही है जो अंदर और बाहर से एक होकर के रहता है, कथनी करनी में समानता है, और जरा भी हेरा फेरी नहीं, जो हूं जैसा हूं बाबा मैं तेरा हूं। वो है सपूत बच्चा। चौथी बात है जो कुछ बाबा ने मुझे दिया है, तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, धन की शक्ति है, समय की शक्ति है, सब कुछ बाबा के लिए है। ये शक्ति अब अंतिम जन्म में बाबा के कार्य में सफल हो, लग जाए, क्योंकि हम सबको बहुत बड़ी समझ बाबा ने दी है कि अगर जरा भी इसको बाबा के प्रति लगा देंगे तो बाबा इसका रिटर्न 21 जन्मों के लिए देने के लिए बन जाएगा। तन की शक्ति है और तन बाबा की सेवा में लग गया तो 21 जन्म की गारंटी है, कंचन काया बन जाएगी, कोई रोग नहीं आएगा, और 84 जन्म के लिए भी नोंदी जा सकती है अगर तन अच्छी तरह से कोई ने बाबा के यज्ञ में लगाया है, कोई परवाह नहीं की है, सफल किया है तन की शक्ति को, उसका तन सदा अभी भी निरोगी और भविष्य में भी रहेगा। मन की शक्तियां हैं, मन मनाभव एक अच्छा वायुमंडल बनाने में सहयोग दें। जहां भी रहें, जिस स्थान पर रहें, जिस सेवा केंद्र पर जाएं, ध्यान रखना जितने आपके शुद्ध और पवित्र संकल्प हैं, जितनी अच्छी वृत्तियां हैं अंदर की, उतना उस स्थान का वायुमंडल अपने आप आकर्षित करेगा, अच्छा बन जाएगा। इसलिए एक एक बाबा का बच्चा जवाबदार है। आप कभी भी ये दोष नहीं दे सकते कि फलाने सेंटर पर अच्छा वायुमंडल नहीं है, या यहां पर व्यक्त बातें चलती हैं, यहां अव्यक्त वातावरण नहीं है। हम कभी कभी दोष दूसरों को देते हैं, अपने आप पर नजर नहीं डाल पाते हैं। हम जिस स्थान पर जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, पढ़ते हैं, रहते हैं, उस स्थान के वायुमंडल को हम अपनी शुद्ध श्रेष्ठ मनसा के द्वारा पवित्र और शक्तिशाली बना सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। बोलने से कई बार बहुत टकराव की स्थिति पैदा होती है, इसलिए मनसा शक्तियों का प्रयोग शुभ भावना के रूप में, कल्याण की भावना के रूप में करने वाला, यहां हम एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बिगड़ी को भी बनाने वाला सपूत बच्चा कहलाता है। अगर कोई कमी है, कमजोरी है, संस्कार है, देखा आपने, आपको पता चल गया, और आपने उस बात को समाया नहीं, समाप्त नहीं किया, दो लोगों को सुना दिया, वायुमंडल दूषित हुआ, भगवान के यज्ञ का वायुमंडल बिगड़ा, आप कभी भी अपने को सपूत बच्चे की लिस्ट में नहीं ला सकते। अगर दिखाई दी कमी है, कमजोरी है, संस्कार है, स्वभाव है, गलत हो गया, तो सपूत उसे ही कहा जाता है जो उस गलती को भी अपने शुभ चिंतन से, अच्छे वाइब्रेशन से, बहुत श्रेष्ठ भावनाओं से परिवर्तित कर दे, उसको बनाने में मदद करे, बिगाड़ने में नहीं। कोई गिर जाता है तो उसको उठाया जाता है, और ही उसको गिराने का प्रयास नहीं किया जाता। सपूत वही है जो गिरे हुए को उठा दे। कमजोर है, हम जानते हैं इसके संस्कार हैं, हम सपूत बाबा के बच्चे हैं, उनको हेल्प करें, मदद करें और उनको आगे ले आएं, गिराएं नहीं, उनकी कमियों को फैलाएं नहीं, नहीं तो उसका कुछ हिस्सा दोष रूप में मेरे ऊपर आ जाएगा। कमी कमजोरी उसकी है और मैंने उसको ग्रहण किया या मैंने उसको वर्णन किया, तो दोषी कौन? जितना वो है उससे ज्यादा हम हैं। इसलिए सपूत बन करके हर एक की कमी कमजोरी को समा करके शुभ भावना संपन्न रहकर अपनी मनसा को सफल करना, ये है सपूत बच्चे का लक्षण। अब बाबा ने हमारे पास धन दिया है, अगर सब तरफ से बच गया, बाहर का खाते नहीं है, बाहर का शौक नहीं है, कोई फैशन नहीं है, कोई शोबाजी नहीं है, कोई फालतू व्यर्थ खर्चे नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, क्या है? बाबा की अमानत है, जो बाबा ने दिया है वो बाबा के कार्य में सफल हो जाए। ध्यान रखना, अगर आपका धन कोई ऐसे कार्य में लग रहा है जिससे कोई आत्मा की गिरावट हो रही है, तो उसका हिस्सा आपको मिल जाएगा। बाबा का सपूत बच्चा वही है जो एक एक पैसे को अमानत समझ करके कार्य में सफल करे, सेवा में लगाए। सेवा में सफल करने की छुट्टी दी है बाबा ने, व्यर्थ में न जाए। ध्यान रखना, जो शक्तियां हैं हमारे पास, जो उपलब्धियां हैं हमारे पास, वो सब बाबा के कार्य में, नए विश्व की स्थापना के कार्य में सफल हों, कुछ भी व्यर्थ न जाए, कुछ भी रह न जाए, इतनी जवाबदारी है, तब बाबा मानेगा ये मेरा सपूत बच्चा है। अगली बात, सिंपल रह करके सैंपल बनना। अगर सचमुच कोई सपूत बच्चा बनना चाहता है तो उसकी यही एक सबसे बड़ी विशेषता है, वो एग्जाम्पल है सबके आगे, किसी भी प्रकार का भभका नहीं करता है, अहंकार अभिमान नहीं दिखाता है। अगर कोई अच्छा काम भी मेरे द्वारा हो गया तो भी उसका उल्टा नशा नहीं चढ़ता, बहुत नम्रता से नम्र चित्त होकर बहुत सिंपल रह करके सैंपल बन जाना, ये सपूत बच्चे की निशानी है। हम सबको बाबा सैंपल रूप में देखना चाहता है, एक एक कुमार एक एक अधर कुमार प्रवृत्ति में रहते भी सैंपल बन करके दिखाए कि बाबा आप किसी को भी कहो कि अगर देखना है तो इस बच्चे को जाकर के देख सकते हो, कैसे प्रवृत्ति में रहते निवृत्ति में रहता है, कैसे कुमार जीवन में रहते न्यारा और प्यारा रहता है, वो इसे अटैचमेंट नहीं है। तो ऐसा सिंपल और सैंपल बनना, यह है सपूत बच्चे की निशानी। साथ साथ एक हमारे जीवन की रॉयल्टी और पर्सनालिटी, बहुत प्योर शुद्ध संकल्प वृत्तियां, प्योरिटी ही इस ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। लोग शरीर की पर्सनालिटी पर, कोई पद की पोजीशन की पर्सनालिटी पर आकर्षित होते, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को प्योरिटी की पर्सनालिटी दी है और वो रॉयल संस्कार दिए हैं, चलना उठना बैठना खाना पीना, अभी कभी कभी अपने आप से पूछना, विचार करना कि मुझे बाबा देवता बनाने के लिए आया है और मेरी पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देव पद प्राप्त करना, उस देवताई जीवन में क्या रॉयलिटी होगी, क्या पर्सनालिटी होगी, उनकी जड़ मूर्तियां भी कितनी दयाल और पर्सनालिटी वाली हैं, हम सब वो बनने वाले हैं तो इस ब्राह्मण जीवन में कितनी वो रॉयल्टी आई है, खान पान रहन सहन व्यवहार, रॉयल्टी माना ये नहीं कोई भबका हो दिखावा हो, सिंपल सिटी है लेकिन रॉयल ब्यूटी है, बहुत रॉयल संस्कार है, कहीं भी आंख नहीं डूबती, किसी चीज के ऊपर हमारी बुद्धि नहीं जाती, इसके पास ऐसा है मेरे पास भी हो, ये इतना अच्छी गाड़ी है इतना अच्छा भवन है इतने अच्छे साधन है मेरे पास भी हो, जो है जिसके पास उसकी तकदीर उसका भाग्य, मेरा अपना भाग्य, मैं अपने भाग्य से प्रसन्न हूं संतुष्ट हूं, बहुत रॉयल हूं और प्योर हूं, इसलिए पर्सनैलिटी है अपने आप की, प्योर आत्माओं के चरणों पर सब झुकते हैं, वो किसी के आगे झुकती नहीं, नम्रता उनका श्रृंगार है लेकिन ऐसे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सबको बाबा सपूत जब कहता है तो ये सबूत चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसे बन करके दिखाएं, बहुत रॉयल, हर खजाने से संपन्न, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं मुझ ब्राह्मण आत्मा के खजाने में। सतयुगी देवताओं के खजाने की बात को छोड़ो, वो तो सब मिलेगा ही, लेकिन संगम युगी आत्माएं किसी गुण से किसी शक्ति से किसी प्राप्ति से वंचित नहीं रह सकती, जिन्होंने भगवान के लिए अपनी जीवन दी है, हमारा तो ये अनुभव है प्रैक्टिकल का अनुभव है, कभी भी कोई भी संकल्प अगर उठ गया तो हाजिर चीज हाजिर हो जाती है, कभी भी इच्छा ही नहीं होती कोई चीज की, सब चीजें उपलब्ध है, क्या चाहिए, सर्व खजाने बाबा ने दिए हैं, सर्व प्राप्तियां सब अनुभूतियां कराई हैं, इतना अंदर का भान है नशा है कि मुझे कोई चीज की अप्राप्ति नहीं है, सब कुछ बाबा ने सौंप दिया। अगर हम बाबा को अर्पित करते हैं तो बाबा हमारे लिए समर्पित हो जाता है, आप अनुभव करके देख लेना, हर शक्ति से संपन्न बनाओ अपने आप को, ज्ञान से गुणों से शक्तियों से खजानों से जो कुछ बाबा दे रहा है संपन्न बनने का तरीका सीख लो, वरदान प्राप्त करने का तरीका दान करो, जो कुछ है उसका दान करो, आपको वरदान मिल जाएगा। माना दूसरों को देना ही बढ़ाना है, सम्मान दो, सत्कार दो, एकदम प्यार दो, प्रेम दो, सब कुछ है बाबा ने दिया है वो बांटो, जितने खजाने हैं उन सब का दान करो, आप वरदानी बन जाएंगे, आपके पास वो संपन्न होता जाएगा। अखुट खजाना है, अविनाशी खजाना है, लेकिन बांटने वाले के पास बढ़ जाता, और नहीं बांट पाता है तो वैसे का वैसा रह जाता। इसलिए अगर सर्व खजानों से संपन्न बनना है तो देने का संस्कार बनाना होगा, और बाबा अपने बच्चों को अपने समान मास्टर दाता बनाना चाहता है। मेरे सपूत बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे, बाबा किसी से कुछ चाहता नहीं है। कोई बच्चा इतना दे तो बाबा रिटर्न करे नहीं, दे या न दे उसका भाग्य, वो अपना बना रहा है, बिगाड़ रहा वो जाने, बाबा तो देता जा रहा है, लुटा रहा है। हम सभी भी बाबा के समान मास्टर दाता बन करके रहें। ये सपूत बच्चों की कुछ क्वालिटी हैं, निशानियां बहुत हैं। अगर निशानियां मैं बताऊं तो गिनती करेंगे, ये सपूत बच्चे की निशानी है, सदा एकदम मैं और मेरे से मुक्त, न मैं बनाता है न मेरा बनाता है, बाबा ने निमित्त बनाए है, नम्र चित होकर के रहना है। मैं निमित्त हूं, निर्माण हूं, निर्माण के कार्य के लिए हूं, ये सबसे पहली निशानी है सपूत बच्चे की। निमित्त आत्मा को कभी भी अहंकार नहीं आ सकता, कराने वाला करा रहा है, बाबा जो करा ले उस मेरा भाग्य बन जाए, करावन हार वो है, और मुझ आत्मा को अगर उसने कुछ निमित्त बना के करा लिया, सबसे खुशी की बात ये है, संगम युग पर हम भगवान के काम में आ गए। अगर है कुछ बाबा के काम में लग जाए, और इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। तो सपूत बच्चा कभी भी करने के बाद ये नहीं कहता मैंने किया, बाबा ने कितना किया, कितना धन समर्पित किया, कितना समर्पित भाव से रहा, कितनी उसको सामना करना पड़ा, सहन करना पड़ा, लेकिन बाबा ने कभी नहीं कहा मैं करता हूं। बिना किए नर नारायण नहीं बनता है, हम सब जानते हैं, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, और ब्रह्मा बाबा ने नंबर वन नारायण पद प्राप्त किया, किस आधार से? बिना किए प्राप्त किया, बिना किए तो बाबा नहीं बनाना नारायण। लेकिन कभी किसी मुरली में ये बाबा ने कहा हो कि मैंने बड़ी अच्छी मुरली सुनाई, मैंने बड़ी अच्छी बच्चों की संभाल की, मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूं, मैं नहीं होता तो कौन करता। आज हम सभी के पास अगर कोई ऐसा होता है कुछ करने वाला, सेंटर कोई बना के दे देता है, कोई थोड़ा सहयोग दे देता है, कोई थोड़ा भी अच्छा कर लेता है तो 10 के आगे वर्णन करता, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मेरा पता होना चाहिए सबको, मधुबन में भी किसी को पता नहीं, बड़ों को भी पता नहीं, मैंने तो इतना सेंटर को किया, ये क्या है। बाबा कहता है इस हाथ से करो और इस हाथ को पता न चले तब आपका भाग्य बनेगा। इसलिए सपूत बच्चे निमित्त समझकर निर्माण चित्त होकर के केवल केवल निर्माण का काम करते हैं, विध्वंस का काम नहीं कर सकते, ये सपूत बच्चों की निशानी है। अगर कोई ऐसा काम करे, किसी की स्थिति को बिगाड़ दे, किसी सेवा को डिस्टर्ब कर दे, वो सपूत नहीं कहला सकता है। इसलिए सपूत वही है जो केवल निर्माण के काम में सदा तत्पर रहता है, किसी की स्थिति को अच्छा बना दे, किसी को आगे बढ़ा दे, सेवाओं को आगे बढ़ाए, और स्थापना के कार्य में अपनी अंगुली दे करके इस कार्य को आगे बढ़ाता चले, प्रवृत्ति में रहे। प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए बाबा ने कोई भी ज्ञान नहीं दिया, लेकिन परवृत्ति रहे, ये सपूत बच्चे की निशानियां हैं। कभी भी प्रवृत्ति उसको अपने बंधन में नहीं बांधती, वृत्तियों से परे है, संभाल रहा है, सब परिवार है साथ में, लेकिन कोई बंधन उसे बांध नहीं सकता, तब कहा जाता है ये सपूत बच्चा है, जो परिवार के बीच में रहते हुए भी सैंपल और एग्जाम्पल है। सदा सत्यता की नींव पर है, सत्यता उसकी नींव है और सत्यता के साथ साथ सभ्यता है। अगर कोई कहे मैं सच्चा हूं इसलिए मैं सच बोल देता हूं, मैं अंदर नहीं रख सकता, लेकिन उस सच से अगर कोई डिस्टर्ब हो जाता है सच और आपने कह करके उसको डिस्टर्ब कर दिया तो वो सच्चाई नहीं मानी जाती। सत्यता माना ही जहां सभ्यता हो, बहुत सभ्यतापूर्ण व्यवहार हो, कहां पर क्या बात कहनी है, कब कहनी है, समय स्थान परिस्थिति देख करके बात कही जाए तो उस बात की वैल्यू होती है, उस सत्यता को सम्मान मिलता है। तो हम सत्य हैं, सत्य स्वरूप में रहें, लेकिन सत्यता का भी अभिमान ना आ जाए, मैं सच्चा हूं, ये भी बाबा ने हम सबको सिखाया है। और साथ साथ सबको सत्कार देने वाला, मांगने वाला नहीं, सम्मान देते चलो, दोगे तो आपको अपने आप मिलेगा। मुझे सम्मान दिया जाए क्योंकि मैं इतना योग्य हूं, मैं इतना सेवादारी हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैंने इतना किया है, कुछ तो कम से कम पूछे, कोई तो मुझे मान दे। बाबा कहता मांगने से कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मांगो मत, बाबा अपने सम्मान में रहो, आपको सब प्रकार का मान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और बहुत संतुष्ट मणि अंदर की आत्मा, संतुष्ट मणि है, जब वो इच्छा मात्रम की स्टेज पर पहुंच जाती है तो संतुष्टता का अनुभव करती है। है ही नहीं कोई अप्राप्ति, कोई इच्छाएं, क्योंकि जरा भी कोई ऐसी इच्छाएं रखी तो इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देती। ये बाबा के शब्द अंडरलाइन करने चाहिए, क्योंकि बाबा बीच बीच में हिंट रूप में हम सबको पढ़ाता है, बच्चे इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देंगी, इच्छाएं परछाई हैं आपकी, आपकी सब पर इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन इच्छा रख करके मृग तृष्णा के समान उसके पीछे भागना नहीं, नहीं तो कभी भी आप उनकी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति अगर हम सबकी बन जाएगी तब बाबा मानेगा ये मेरा सपूत बच्चा अब अपनी जीवन का सबूत दिखा सकता है। कैसे जीवन चाहिए, क्या सबूत देना है, बाबा कहे ये मेरा बच्चा अचल है, अडोल है, एक रस है, बेगमपुर का बादशाह है, इसके चलन से, चेहरे से, खुशनुमा स्थिति से बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, तब कहेंगे इसने सपूत बन करके सबूत दिखाया है। कोई को बहुत अच्छी अच्छी खुराक मिले, मान लो आप प्रवृत्ति वाले अपने बच्चे को बहुत अच्छी अच्छी खुराक खिला रहे हो, बहुत ध्यान रखते हो, हर बात का ध्यान रखते हो, फिर भी अगर वो कमजोर हो, दुर्बल हो, घड़ी घड़ी बीमार पड़ जाता हो, तो आपके अंदर से क्या निकलेगा, मैं तो इतनी संभाल करता हूं, मैं तो इतना अच्छा इसको भोजन देता हूं, पता नहीं इसको कौन सी नजर लग गई, पता नहीं इसको क्या हो गया। बाबा को भी कभी कभी हम बच्चों पर ऐसा ही तरस पड़ता है, रहम आता है कि मैं अपने बच्चों को इतना शक्तिशाली भोजन खिलाता हूं, वरदान स्लोगन ऐसी ऐसी पॉइंट्स, ऐसी शिक्षाएं देता हूं, फिर भी पता नहीं क्या होता है बच्चों को। कभी कहेंगे क्या करूं बाबा, माया बड़ा परेशान कर रही है, मेहनत में समय जा रहा है, युद्ध में समय जा रहा है। बाबा कहता है इसने सबूत नहीं दे पाया पालना का, पालना का सबूत है एकदम निश्चिंत जीवन, बहुत डबल लाइट जीवन, एक रस जीवन, बिल्कुल उपराम। तो हम सब बाबा की पालना का सबूत दें, सपूत बन करके कि बाबा आपने मुझे इतना दिया है, आप मेरी लाइफ से बिल्कुल निश्चिंत रहें, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी माया आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, पहाड़ जितना भी पाप पे परा जाए मैं हिलने वाला नहीं हूं, मैं अचल हूं, अडोल हूं, एक रस हूं और मैं आपका नाम बाला करने वाला, रोशन करने वाला आपका सपूत बच्चा हूं। तो ऐसा सबूत दे करके, ऐसी जीवन बना करके हम सब बाबा को इस मर्जीवा जन्म में बाबा की पालना का रिटर्न करें, तब बाबा हमसे कहेगा वाह बच्चे वाह, वाह वाह करेंगे ना, सभी वाह वाह बच्चे हैं ना, तो इस भट्टी में आए हो सभी वाह वाह बन करके जाना। ओम शांति।